پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر تیانمان. ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ آپ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سن سکتے ہیں, جہاں آپ کو اس کا لنک دستیاب ہوگا, اور پروگرام کے بعد اس کی آڈیو بھی انہیں فیس بک پیجز پر دستیاب ہوگی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے اور ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف دیکھنے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. تو لیجئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج کی مہمان کے تعارف سے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں ہیومن ریسورسز مینجمنٹ اور بزنس کے شعبے میں کامیابی سے آگے بڑھتی ہوئی ایک پاکستانی امریکی خاتون مریم خان, جو یہاں ورجینیا میں قائم سائبر سیکیورٹی بایو میٹرکس کی ایک کمپنی ڈیون کی ہیومن ریسورس بزنس پارٹنر ہیں. مریم خان کی کمپنی ڈیون بین الاقوامی سطح پر سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے مختلف سافٹ ویئرز کے استعمال سے معلومات تک رسائی کو تیز اور آسان بنانے کے طریقے فراہم کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری مہمان مریم خان بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی مدد کے لیے یہاں امریکہ میں قائم ایک ادارے اوبیٹ ہیلپرز کی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کمیٹی کی رکن بھی ہیں. جبکہ وہ بین المذاہب ہم آہنگی کی سرگرمیوں میں بھی ہر دم رواں رہتی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہماری مہمان مریم خان اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون پر ورجینیا سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم مریم خان صاحبہ.
السلام علیکم یاسمین, تھینک یو سو مچ مجھے اپنے شو پہ بلانے کا.
اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے سننے والوں کے لیے نکالا. آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کی کمپنی ایک سائبر سیکیورٹی سافٹ ویئر کمپنی ہے جو سائبر سیکیورٹی کے لیے سافٹ ویئر بناتی ہے, تو سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو سادہ لفظوں میں بتائیے کہ سائبر سیکیورٹی سے کیا مراد ہے اور انٹرنیٹ کے اس دور میں سائبر سیکیورٹی کی کیا اہمیت ہے.
ہاں جی ڈیفینیٹلی, سائبر سیکیورٹی ایکچولی ایک پروسیس ہے جو آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں گھر پہ, آپ کے کمپنیز میں جو نیٹ ورکس ہیں, آپ کے ہاتھ میں جو سیل فونز ہیں, ان میں آپ پرسنل انفارمیشن رکھتے ہیں, ڈیٹا رکھتے ہیں, اور کوئی بھی اس سے ڈیٹا چرا سکتا ہے. تو سائبر سیکیورٹی ایک سسٹم ہے جو ایک دیوار بن جاتا ہے کہ کوئی باہر سے آپ کو آپ کی انفارمیشن سیو نہ کر سکے, چرا نہ سکے, ہیک نہ کر سکے. تو فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کے کمپیوٹر کو ہیک کرنا چاہتا ہے تو سائبر سیکیورٹی اس کو روک دیتی ہے, اس کو کہتی ہے کہ مجھے پاس ورڈ دو, مجھے کچھ دو, تم کون ہو, تم اس کمپیوٹر میں کیوں آنا چاہ رہے ہو. تو اس انٹرنیٹ کے دور میں سائبر سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب آج کل ہر ایک کے ہاتھوں میں کچھ نہ کوئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں آپ پاس ورڈ سیو کرتے ہیں, جس میں آپ اپنی پرسنل انفارمیشن سیو کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک طرح سے سیف ہے.
تو جو آپ کی کمپنی, تو جہاں جہاں انٹرنیٹ ہے اور کمپیوٹرز ہیں وہاں سائبر سیکیورٹی کی اور سائبر سیکیورٹی کے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے, ٹھیک؟
ایبسولوٹلی, سائبر سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ناٹ جسٹ آج کل تو اب سیل فونس بھی آ گئے جن میں ایوری ڈے جو یوز کر رہے ہیں اس میں انٹرنیٹ ہے. تو اگر آپ کی کمپیوٹر آپ کا فون انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے تو بہت بڑی رسک میں ہے کہ اگر وہ سیکیورڈ نہیں ہے تو آپ کی انفارمیشن چوری ہو سکتی ہے. آپ کی پکچرز, آپ کے پرسنل پاس ورڈ جو آپ نے سیو کیے ہیں, اس طرح کی چیزیں آرام سے اس سے کوئی بھی لے سکتا ہے.
تو پھر آپ کی جو کمپنی ہے وہ سافٹ ویئر ایسے بناتی ہے جس کی مدد سے جسے جو لوگ بھی استعمال کریں تو ان کے جو ان کا جو ڈیٹا ہے ان کے فون میں ان کے کمپیوٹر میں وہ محفوظ رہتا ہے. تو کیسے کون سے سافٹ ویئر بناتی ہے اور کیا یہ کوئی خاص سافٹ ویئر ہیں جو آپ کی کمپنی بناتی ہے؟
ہاں جی, ایکچولی ہماری کمپنی ایک سافٹ ویئر جو بناتی ہے وہ بایو میٹرک سے ریلیٹڈ ہے. بایو میٹرکس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو یونیک چیزیں ہوتی ہیں, جیسے آپ کی فنگر پرنٹس, آپ کی آنکھیں, آپ کا چہرہ, آپ کی آواز, یہ ایک چیز ہے جو آپ کی پرسنل یونیک ٹریٹ ہے. تو ہماری کمپنی ان چیزوں کو لے کے بناتی ہے کہ آپ اگر اپنا فون ان لاک کرنا چاہیں پاس ورڈ کے ساتھ تو وہ آپ کو کہے گا اپنا چہرہ دکھاؤ, پھر آپ کا چہرہ جب کے سامنے آئے گا پھر آپ کا فون ان لاک ہوگا. یا آپ کی فنگر پرنٹ کہے گا کہ اپنی فنگر پرنٹ انگوٹھا جو ہے فون پہ رکھو پھر ہم آپ کی فون ان لاک کریں گے. تو ہماری کمپنی جو ہے بہت سالوں 15 ایئر سے گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہے ہم لوگ نے فائنینشیل انڈسٹری میں گئے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا فون یوز کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کے لیے, تو آپ کو اپنا یوزر نیم ڈالنا ہوتا ہے, آپ کو اپنا پاس ورڈ ڈالنا ہوتا ہے, پھر آپ اپنا بینک اکاؤنٹ ایکسیس کر سکتے ہیں اپنے فون سے. تو پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو آ کے وہ کر سکتا ہے, یو نو آپ کو ہیک کر سکتا ہے, کوئی بھی پاس ورڈ یوزر نیم پاس ورڈ آپ کو چلا کے کبھی بھی ادھر جا سکتا ہے, آپ کا پیسہ چلا سکتا ہے. تو ہماری کمپنی کیا کہتی ہے کہ ہم لوگ بینک کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ جو بھی اینڈ یوزر ہے جو اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی آواز سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے چہرے سے یا اپنی انگوٹھے سے لاگ ان کر سکتا ہے.
تو چار فیچرز آپ نے, اچھا تو یہ چار فیچرز ہیں, ورنہ ایک آدھ فیچر تو پہلے بھی اویلیبل تھا, لیکن آپ کی کمپنی ایک دم سے چار چیزیں ایسی دیتی ہے جس کی مدد سے آپ اپنے فون کو ان لاک کر سکتے ہیں یا اپنے کمپیوٹر کو لاک یا ان لاک کر سکتے ہیں.
پہلے جب ہم لوگ جب ہماری کمپنی شروع ہوئی تھی اس وقت یہ بایو میٹرک ٹیکنالوجی اتنی کامن نہیں تھی, ایوری ڈے ہر روز لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ ہوتی کیا ہے. پھر ایپل فون نے انٹروڈیوس کیا کہ ایپل جس کے پاس آئی فونس ہے وہ اپنا انگوٹھا لے کے اپنا فون ان لاک کر لیں. جب یہ ایپل نے کیا تو پھر ہماری کمپنی سوچا کہ اب ہر روز لوگوں کو پتا چل گیا بایو میٹرکس کیا ہوتا ہے, سائبر سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اب ہم لوگ پرائیویٹ انڈسٹری میں آئے, ہم لوگ بینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ یو نو ڈفرینٹ انڈسٹری میں, ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ ان کو بتا سکیں کہ آپ کے جو اینڈ یوزرز ہیں وہ اس پہ بہت اور حفاظت سے رہیں گے, ان کا پیسہ صحیح رہے گا, ان کی میڈیکل انفارمیشن صحیح رہے گی, کیونکہ کوئی اس کو چلا نہیں سکتا.
تو اس وقت آپ کی جو کمپنی کے سافٹ ویئرز ہیں وہ کون کون استعمال کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟
اس وقت جو ہے ہم لوگ اراؤنڈ دا ورلڈ ڈفرنٹ ایئرپورٹس پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, ہم لوگ بارڈر پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرنٹ کنٹریز میں, اور ہماری گورنمنٹ کے باہر جو ہے ہم لوگ پرائیویٹ انڈسٹریز میں بھی ہیں. ابھی ہم لوگ یو ایس اے بینک از ون آف اور بگیسٹ کسٹمرس ادھر امیرکا میں ہی, اور ان کے ساتھ ابھی ہم لوگ 1 million یوزرس سے اوپر آ چکے ہیں جو ہمارا پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں.
اچھا, 1 million
اوور 1 million یوزرس بس صرف اس بینک کے ساتھ.
اچھا,
اور یہ جو ہے یہ اتنا سکسیسفل ہوا ہے کہ سب لوگ بہت سیکیور فیل کر رہے ہیں. ایک تو آپ کو اپنا یوزر پاس ورڈ آپ کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے, یو نو آپ کے ہاتھ پاس ہمیشہ آپ کا انگوٹھا, آپ کی آواز, آپ کی چہرہ, ہر چیز رہتا ہے, تو آپ آرام سے لاگ ان کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ بہت لوگ اس کو یوز کرنے کے بعد سیکیور فیل کرتے ہیں کہ ہاں اگر میرا فون کہیں چھٹ بھی گیا, اگر میرا فون کسی نے چرا لیا تو وہ میرے بینک اکاؤنٹ میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس میری آواز نہیں ہے, میرا چہرہ نہیں ہے.
تو یہ خاص آپ نے بھرپور سیکیورٹی فراہم کر دی ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے ٹیلی فون پر جو کچھ ڈیٹا ہے, اپنے کمپیوٹر پر جو ڈیٹا ہے وہ اس کو محفوظ رکھ سکیں گے. تو کیا آپ کا جو یہ سافٹ ویئر ہے عام اویلیبل ہے؟ لوگ اگر جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ چاہیں کہ وہ اس کو استعمال کریں تو کیسے؟
جی, ये हमारा सॉफ्टवेयर एक्चुअली हम लोग कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो जैसे यूएसए बैंक जो है वो उनके साथ हम लोग काम कर रहे थे कि वो अपने एंड यूजर्स को ये टेक्नोलॉजी देना चाह रहे थे कि अगर वो आपके साथ बैंकिंग करें तो ये इतना सिक्योर है कि उनकी चीजें कहीं स्टील नहीं होंगी। तो अगर कोई लिसनर्स है हमारे जो एक्चुअली कंपनीज में काम करते हैं, जिनके पास बिजनेसेस हैं, जो अपना डेटा सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू सी के हम लोग उनके लिए क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम लोग के पास ये कैपेबिलिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग हर कंपनी के साथ काम करते हैं कि कुछ कंपनीज कहती हैं हमें बस अंगूठा थंबप्रिंट चाहिए, कुछ कंपनीज कहते हैं हमें आवाज और चेहरा चाहिए। तो हम लोग हर कंपनी के साथ काम करते हैं टू मेक श्योर कि कैसे वो अपने एंड यूजर के पास वो कर सके। और बहुत सारे बैंक्स हैं जो अभी यूज नहीं कर रहे ये टेक्नोलॉजी, तो अगर आपका बैंक नहीं यूज कर रहा है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम मेरी प्रोटेक्शन के लिए कि मेरा पासवर्ड यूजर नेम कोई हैक नहीं कर सके, मेरे बैंक मेरे लिए क्या कर रहे हैं, तो उसे पूछे, आप उनसे क्वेश्चन करें क्योंकि सिक्योरिटी इज रियली इम्पोर्टेंट स्पेशली आजकल के दौर में।
तो आजकल के दौर में जो कि इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट की दुनिया एक मुख्तलिफ दुनिया है और इसके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं और इसके जराइम भी मुख्तलिफ हैं, तो क्या हमारे सुनने वालों को बताएंगी कि इंटरनेट की वजह से कौन कौन से जो क्राइम्स हैं करना आसान हो गए हैं, खासतौर पर साइबर क्राइम्स?
श्योर, साइबर क्राइम्स एक्चुअली बहुत ही, अगर आपको टेक्नोलॉजी का पता है तो साइबर क्राइम बहुत ही आसान है करने के लिए, क्योंकि आप कहीं बैठे हैं और किसी का फोन, जैसे अगर मैं अमेरिका में बैठी हुई हूँ तो मैं किसी का फोन पाकिस्तान में हैक कर सकती हूँ। बहुत इजी हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से कि आप कहीं भी आप क्राइम दूसरे कंट्री में कर सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कितना आपके फोन, आपके कंप्यूटर कितने वल्नरेबल हैं इन चीजों के लिए। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक तो आप सब चीज को सिक्योर रखें और दूसरा अगर आप अपनी चीजें कंप्यूटर्स पे डाल रहे हैं, जैसे कि पासवर्ड डाल रहे हैं, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर, अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस तरह की चीजें आप सेव करते हैं, अपने पासपोर्ट की पिक्चर अगर आपने सेव की हुई है कंप्यूटर पे, तो ये सब चीजें आराम से हैक हो सकती है। तो अगर आपका कोई भी इस तरह से कंप्यूटर्स पे या फोन पे सेव हुआ है, उसको भी आप किसी पासवर्ड से या किसी चीज से उसको भी आपसे उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर वो कोई आपके कंप्यूटर में आ गया तो हर चीज आराम से ले सकता है। जैसे कि आप, ये है कि आप घर पे अगर रह रहे हैं तो आपने अपना सामने का फ्रंट डोर जो है खुला रख दिया रात में, कह दिया कि जिसको भी आना है अंदर आ जाओ, मेरी चीजें ले जाओ। तो अगर आपके कंप्यूटर्स पे, अगर आपके सेल फोन पे अगर ये सेफ और सिक्योरिटी नहीं है, तो जैसे कि आप रात में दरवाजा खोल के सो रहे हैं कि कोई भी आके
तो वैसे तो कानून और जाब्ते मौजूद होते हैं, आम जिंदगी में कोई चोर है या डाकू है और उसको गिरफ्तार करें या उसको सजा दें, तो साइबर क्राइम्स जो करते हैं इस तरह, जो सरेआम आपके कंप्यूटर में घुस गए, सरेआम आपके टेलीफोन में घुस गए, उनके लिए कोई सजा वगैरह है या कोई कानून जाब्ते हैं, और अगर हैं तो उन पर अमल दरामद क्या हो सकता है या मुमकिन है या हो रहा है
उनके लिए? बिकॉज ये इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी इतनी नई चीज है कि हर चीज साथ साथ हो रही है, क्राइम भी साथ साथ हो रहे हैं और लॉ भी साथ साथ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में एक साइबर सिक्योरिटी की टीम है जो अगर कहीं भी कोई हैक हुआ, कहीं भी कुछ हुआ, तो वो साइबर सिक्योरिटी की टीम को कॉल करते हैं। इट्स एक्चुअली वाशिंगटन डीसी में भी है, तो उनको कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर हैक हो गया, तो हमारे सारे, फॉर एग्जांपल बैंक का अगर कंप्यूटर हैक हो जाए तो उनके सारे यूजर जो है, उनका डेटा, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कितना पैसा है काम में, सब कुछ सब कुछ यूज कर सकते हैं हैकर्स को। तो फिर वो साइबर सिक्योरिटी टीम आती है, वो देखती है कि कैसे हैक हुआ, किसने किया, कब किया, लेकिन एट द सेम टाइम लॉस इतने सारे नहीं है जो उन लोगों को कानून से वो कर सकें। तो
इसलिए अभी इस पर मजीद काम होना बाकी है,
अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे लॉज बन रहे वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है और नई तरह के क्राइम हो रहे हैं।
अच्छा, तो इस कंपनी में जो है तो साइबर सिक्योरिटी की कंपनी, लेकिन आप उसके ह्यूमन रिसोर्सेज का जो शोभा है उसकी आप बिजनेस पार्टनर हैं, तो कुछ बताइए कि ह्यूमन रिसोर्सेज का जो शोभा जिसकी आप बिजनेस पार्टनर हैं इस कंपनी की, उसमें आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और वो क्या करता है?
हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्चुअली हर कंपनी में बहुत जरूरी है. ये डिपार्टमेंट जो है ये मेक श्योर करता है कि एक तो कंपनी जो है पॉलिसीज लॉज गोल्स के साथ चल रही है, दूसरा ये मेक श्योर करता है कि सारे जो मैनेजमेंट टीम है, एग्जीक्यूटिव टीम है, एम्प्लॉई लेवल्स पे जो जो लोग हैं सबकी सबको एक तरह का यू नो बेनिफिट मिल रहे हैं, पे मिल रही है टाइम पे, उनको कोई भी क्वेश्चन है अपने टैक्सेस के बारे में इस तरह की चीजें वो हम करते हैं. और हम लोग रिव्यूज भी करते हैं, जैसे यू नो अगर आपकी कंपनी ग्रो हो रही है और आपको नेक्स्ट मंथ 10 लोग को हायर करना है तो HR जो है काम करता है इस काम पे.
अच्छा.
और पेरोल बेनिफिट्स, रिक्रूटिंग, हम लोग ट्रेनिंग पे भी काम करते हैं. तो बहुत दफा यू नो कोई एम्प्लॉई आया है किसी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉई आया है, उसको मैनेजर बनाना है तो उसको ट्रेन करते हैं कि कैसे मैनेजर बनना चाहिए, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं. और एज अ बिजनेस HR बिजनेस पार्टनर मैं एग्जीक्यूटिव टीम के साथ भी काम करती हूँ टू मेक श्योर के हमारे जो सारे गोल्स हैं स्ट्रेटेजिक भी सब अलाइव है. हम लोग को जैसे यू नो 2017 के लिए HR को क्या करना है टू मेक श्योर के बिजनेस इज सक्सीडिंग, हम लोग की एम्प्लॉई काम ठीक रहेगी, हम लोग की कॉस्ट ठीक रहेगी, इस तरह की चीजें हम लोग उनके साथ करते हैं.
अच्छा. तो आप इस कंपनी की में आप पहले आपने जॉब की थी, फिर आप इसकी पार्टनर बन गई, को पार्टनर बन गई.
जी मैं एक्चुअली मैंने जो ग्रेजुएट किया था ह्यूमन रिसोर्स डिग्री से उसके बाद मैंने HR की टीम में मुझे जॉब मिल गई. उसमें मैं जर्नलिस्ट लेवल पे काम करती थी, डे टू डे जैसे पेरोल, रिक्रूटिंग, इस तरह की चीजें. उसके बाद जो है मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग पोजिशन पे आई, उस पर भी मैंने HR में काम किया. अब फाइनली इस जॉब पे मैं HR बिजनेस पार्टनर लेवल पे काम कर रही हूँ, जो है कि एग्जीक्यूटिव लेवल के साथ मैं ज्यादा इन्वॉल्व हूँ. तो जो डेली काम होता है वो तो मैं करती हूँ, लेकिन एज वेल एज यू नो एट एग्जीक्यूटिव लेवल की कंपनी के साथ यू नो के पार्टनर बन के कैसे ग्रो कर सकते हैं.
अच्छा. तो पाकिस्तान में आप आपका ताल्लुक किस शहर से, कहाँ से, कैसे आई यहाँ पर, कब से आई, क्या पढ़ा?
पाकिस्तान में मैं कराची से हूँ. मेरी अपनी फैमिली लाहौर में रहती है, अब कराची में, मैं कराची में पैदा हुई थी. और हम लोग मिड 90s में अमेरिका में आए थे. मेरी डैड की जॉब हुई थी इंडियाना में.
अच्छा.
तो उस वक्त से हम लोग सब यू नो एलिमेंट्री स्कूल में थे, फोर्थ फिफ्थ ग्रेड में थे मैं और मेरी बहनें. तो उस वक्त से अभी तक हम लोग ने हम लोग यहाँ पे रह रहे थे. हर साल या हर दो साल हम लोग पाकिस्तान जरूर जाते थे क्योंकि पाकिस्तान की बात से तो आ रहे हैं. यू नो वहाँ पे फैमिली है, वहाँ पे खाना है, मामू है, खुदी है, सब लोग वहाँ पे होती थी तो उनको विजिट करने के लिए हम लोग मेक श्योर करते थे.
अच्छा. तो पाकिस्तान से आपका रब्ता जो आपके वालदैन का था और जो आपका भी है वो अभी तक बरकरार है, और उसे आप गाहे गाहे आप वहाँ जब मौका मिलता है आप लोग फैमिली के साथ वहाँ जाते हैं.
हम लोग जाते हैं.
बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया मरियम खान साहिबा. हमारी गुफ्तगू भी जारी है, पाकिस्तान के बारे में और भी बातें होंगी, पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में बातें करेंगे, जो बहुत से सवालात उन्होंने फेसबुक पर आपके लिए पोस्ट किए हैं. तो लेकिन इस वक्त हमारी प्रोड्यूसर गुलरुख कह रही हैं कि पहले एक ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद आप बाकी गुफ्तगू कीजिए. तो पहले एक ब्रेक. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और बिजनेस के शोबे में कामयाबी से आगे बढ़ती हुई एक पाकिस्तानी अमेरिकी खातून मरियम खान, जो यहाँ वर्जीनिया में कायम साइबर सिक्योरिटी बायोमेट्रिक्स की एक कंपनी डियोन की ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर हैं। मरियम खान की कंपनी डियोन बैनुल अक्वामी सतह पर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के इस्तेमाल से मालूमात तक रसाई को तेज और आसान बनाने के तरीके फराहम करती है. इसके साथ साथ हमारी मेहमान मरियम खान बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों की मदद के लिए यहां अमेरिका में कायम एक इदारे ओबेट हेल्पर्स की स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कमेटी की रुकन भी हैं। जबकि वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सरगर्मियों में भी हरदम रवा रहती हैं। ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahezindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. اور ہماری مہمان اس وقت موجود ہیں ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. مریم خان, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. امریکہ میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ اس وقت روزگار کے مواقع کی صورتحال کیا ہے اور کن شعبوں میں روزگار کے مواقع زیادہ ہیں؟
امریکہ میں ایکچولی امپلائمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ہر شہر میں. تو ایک چیز جو ہے, ہم لوگ ہر ٹرینڈ میں, ہر انڈسٹری میں جس میں میں نے کام کیا ہے, ہر شہر میں جس میں میں نے کام کیا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر, کمپیوٹر ریلیٹڈ جابس بہت ساری ہوتی ہیں. آبویسلی ٹیکنالوجی اس طرح سے بڑھی ہے کہ ان یہ جابس کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ فل ہو رہی نہیں, کمپنیز میں کوئی ہائر نہیں کر رہے, ہمیشہ یہ جابس اویلیبل رہی ہیں ہر جگہ. اور اسپیشلی اگر دیکھا جائے آج کل کا دور, ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر جنریشن میں نئی ٹیکنالوجی, ہر جنریشن کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے بزنس میں. تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ او یہ تو اب میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ ٹیکنالوجی میں نہیں پڑھنا چاہتا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ یہ تو پرانا ہو گیا. نو, بیکاز ایوری ٹائم ایوری ایئر ہر چیز جو ہے نئی ہو رہی ہے, نئے ٹرینڈس آ رہے ہیں, نئی لینگویجز آ رہی ہیں سافٹ ویئر میں, جو آپ لرن کر کے آرام سے انڈسٹریز میں کر سکتے ہیں, کمپنی میں کر سکتے.
تو اسی طرح پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو تعلیم کے مواقع ہیں وہ بھی انہی شعبوں میں زیادہ ہیں.
سب سے زیادہ ٹرینڈ انہی شعبوں میں ہے. آبویسلی یو نو, اگر آپ دیکھیں جیسے ہم ڈاکٹرز کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے, لوئرز کی ضرورت ہوتی ہے, ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے, یہ سب بھی اس طرح کی فیلڈز ہیں جو آپ آرام سے اس میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں, سم تھنگ دیٹ انکریزنگ, وہ ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی سم تھنگ جو آپ, ڈزنٹ میٹر کس اس میں گھس رہے ہیں آپ, ٹیکنالوجی میں آرام سے آپ کو جابس مل سکتی ہیں اس فیلڈ میں.
اچھا, تو بہت سے پاکستانی نوجوان ہیں اور دوسرے پاکستانی مرد ہیں, خواتین ہیں, جو یہاں امریکہ میں آ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں, تو ان کے لیے یہاں پر تعلیم کے کیا مواقع ہیں اور وہ کس طرح یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کریں, کس طرح وہ اپلائی کریں, کچھ انفارمیشن آپ ان کو اس وقت دے سکیں گی؟
ہاں جی, ڈیفینیٹلی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کس چیز میں جانا چاہتے ہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آپ کمپیوٹرز میں جانا چاہتے ہیں, آپ اکاؤنٹنگ میں جانا چاہتے ہیں. تو نمبر ون از کہ آپ دیکھیں کہ اس کو ڈیسائڈ کرنے سے پہلے دیکھیں ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں. تو اگر آپ کا اینڈ گول ہے کہ آپ کینیڈا میں کام کرنا چاہتے ہیں یا دبئی میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ دیکھیں کہ کیا کس طرح کی جابس مارکیٹ میں ہیں, کس طرح کی کمپنیز آ رہی ہیں نئی, کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کے لحاظ سے پھر آپ اپنی پڑھائی بھی کریں کہ آپ کو گارنٹی ہوگی کہ آپ جب دو تین چار سال بعد آپ کی ڈگری مل جائے تو آپ کی جاب بھی آرام سے آ جائے گی.
اچھا,
اور اس میں جو ہے آپ آرام سے ریسرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے, یو نو, اگر کوئی اسپیسیفک جیسے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا سافٹ ویئر انجینئر پہ جانا چاہتے ہیں, تو آپ یو نو ریسرچ کریں کہ ٹاپ 10 اسکول جو ہیں میڈیکل میں کون سے ہیں, یا ٹاپ 10 اسکول سافٹ ویئر انجینئرز میں کون سے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے آپ ایچ اسکول پہ جائیں, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, اور وہاں پہ آپ کو اسکالرشپس کے پیجز ملیں گے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے پروگرام ہر اسکول میں آج کل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو یہ لوگ الاؤ کرتے ہیں, تو اس میں دیکھیں ان کا پروسیس کیا ہے, ان کی اپلیکیشنس کیا ہیں, ان کی اسکالرشپس کیا ہیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایون بیفور آپ اپلائی کریں کہ آپ کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے.
اور یہ ذہن بنائیں کتنا عرصہ پہلے بنا لیں, اگر کسی نے یہاں پر امریکہ میں یا کسی بیرون ملک جا کر پڑھنا ہے تو کتنا عرصہ پہلے وہ اپنا کام شروع کر دے کہ وہ ایک خاص وقت میں یہاں پر یا کسی بھی بیرون ملک جا سکے پڑھنے کے لیے؟
میری سجیشن تو ہوگی نائنتھ سے شروع کر دیں, جسٹ ٹو سی کہ نائنتھ اور ٹینتھ میں, یو نو, ہر کنٹری میں جیسے برٹش سسٹم ڈفرینٹ ہے, امریکن سسٹم ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرنٹ چیزوں کو فالو کرتے ہیں, لیکن نائنتھ اور ٹینتھ گریڈ از, اس کے بعد آپ نہیں اسٹارٹ کریں, اسی وقت آپ اسٹارٹ کریں, آپ ریسرچ کریں کہ آپ کا پیشن کیا ہے, کس چیز میں ہے. اگر آپ کا پیشن دو ڈفرینٹ ایریاز میں ہے تو اس کی جاب کو ریسرچ کریں کہ یو نو جب جاب مل جائے پیسہ کس میں زیادہ آئے گا, یا گروتھ کس میں زیادہ آئے گی, یا فیوچر ٹرینڈ کیا ہے. कि जिसमें आप जाके आप वो नहीं रिग्रेट नहीं करेंगे कि ओ इसकी इसकी तो जॉब में ले ऑफ हो रहे हैं, निकाला जा रहा है कंपनी से. तो इस तरह की रिसर्च करना बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम मेक श्योर कि यू नो आप वो करना चाहते हैं वो काम.
तो बहुत से अमेरिका में ऐसे तालीमी इदारे मौजूद हैं जहाँ स्कॉलरशिप्स मौजूद होते हैं लेकिन उन्हें लेने वाला कोई नहीं होता क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि इन यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं. तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियों को आप जानती हैं जहाँ स्कॉलरशिप्स आसानी से मिल सकते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को?
एक्चुअली यूनिवर्सिटीज जो है आजकल, मैंने एक्चुअली कल रात भी थोड़ा सा रिसर्च किया था, हर यूनिवर्सिटी में इनका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है. तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं पहले तो देखें उसकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप एजुकेशन ले रही हैं इधर आके तो आप यू नो अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाके लें ताकि आपकी डिग्री में कुछ कुछ गलत हो. तो जब आप रिसर्च करके डिसाइड करने किसी यूनिवर्सिटी का तो आप फिर उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को कॉल करें क्योंकि वो लोग जो है लिस्ट रखते हैं ऑफ ऑल द स्कॉलरशिप्स दैट आर अवेलेबल, of all of the grants that are available. क्योंकि कभी कभी आप यू नो किसी प्रोजेक्ट पे काम करके ग्रांट्स ले सकते हैं उनसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर उनकी उनके साथ अगर आप उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे तो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर और उससे आपको ग्रांट मिलेगा. तो ये एक तरह से भी आपके लिए स्कॉलरशिप बन जाती है. तो ईच यूनिवर्सिटी हैज अ डिफरेंट यूनिक प्रोग्राम. तो मेरी सजेशन है कि जब आप यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करें या दो तीन फाइनल पे आ जाएं तो उनको कॉन्टैक्ट करें उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को. तो वो आपको या तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे या तो आपको कनेक्ट करेंगे किसी काउंसलर के साथ किसी टीम के साथ जो आपके आपको और एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या अवेलेबिलिटीज है. और इट्स इम्पोर्टेंट कि टू नो कि यहाँ पे जाने से पहले ही आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स पे, ग्रांट्स पे, इस तरह की चीजों पे. तो यू नो इवन बिफोर स्टार्टिंग स्कूल आपके पास हाथ में पैसा आ सकता है. So it's good to do that research.
अच्छा, तो सोशल मीडिया को कहते हैं कि इस्तेमाल किया जा सकता है खुद को कंपनियों से मुतारिफ कराने के लिए, ये क्या है?
सोशल मीडिया एक्चुअली यू नो इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है. अब आजकल ये ट्रेंड चला गया है कि आप डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस पे जाएं और यू नो दरवाजे पे नॉक करें कि अच्छा आपके पास कोई ओपनिंग्स है, मैं अपनी रेज्यूमे दे सकता हूँ. अब ये सब ट्रेंड नहीं रहा. So, up to the number one site I suggest to everybody is LinkedIn. LinkedIn mein aap jab jayenge apna account banaye, it's free to use. And usme jo hai aap dekh sakte hain ki agar aapka goal hai ki Microsoft ke saath kaam karna hai, theek hai, to aap Microsoft mein dekhein ki usme kaun aapki connection hai jo udhar kaam kar rahi hai abhi. तो उससे कहेंगे हे मुझे HR को इंट्रोड्यूस कर दो या मुझे कनेक्ट कर दो, अपनी एक नेटवर्क बनाए वहां पे. तो उसके साथ जो है आप आराम से लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं. ऑनलाइन आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ करने की यू नो प्लेन टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन आराम से कनेक्ट होके आगे बढ़ सकते हैं.
अच्छा, और अब तो यहाँ अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में ऐसी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं जो ऑनलाइन डिग्रियां देती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देती हैं, कुछ उनका जिक्र?
हाँ जी, ऑनलाइन डिग्रीज बहुत एक्चुअली बहुत सारी आ रही है. इवन जो पहले सिर्फ फॉर एग्जांपल इंडियाना यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 10 बिजनेस स्कूल में कंसिडर्ड होती है अमेरिका में, तो उसने जो है अब ऑनलाइन भी खोल दिया है कि आप ऑनलाइन उनकी बिजनेस डिग्री दे सकते हैं. तो अगेन इतना आजकल टेक्नोलॉजी भी बढ़ी हुई है कि आराम से लोग ये ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज हैं या उनकी अगर फील्ड में उनको जॉब नहीं मिल रही लेकिन कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो ऑनलाइन डिग्रीज आर आइडियल फॉर पीपल जिनका फ्लेक्सिबल स्केड्यूल वो है इतना नहीं हो सकता. तो बस एक चीज वॉच आउट करने की है कि ऑनलाइन डिग्रीज जो है बिकॉज इतनी नई है कि बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारे बिजनेसेस उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि आप कौन सी ऑनलाइन डिग्री ले रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं. अगर हार्वर्ड की ऑनलाइन डिग्री ले रहे हैं तो वो डिफरेंट होगी कम्पेयर टू यू नो फीनिक्स की ऑनलाइन डिग्री.
अच्छा, तो ये तमाम जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने ऑनलाइन डिग्रियां देनी शुरू कर दी हैं, बड़ी बड़ी?
हाँ जी, ऑलमोस्ट सब ने नहीं लेकिन बहुत सारे ने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट प्रोग्राम्स पे ऑनलाइन डिग्री शुरू कर दी है.
अच्छा, तो उसके लिए जाहिर है कि वो पैसे भी खर्च करते हैं, यानी उनको ऑनलाइन फ्री नहीं होता बल्कि पेमेंट करनी पड़ती है.
एब्सोल्युटली पेमेंट करनी पड़ती है. उसमें एक बात है कि आप जो है कहीं भी बैठ के वो क्लास ले सकते हैं. अगर आप कभी भी स्केड्यूल अगर रात में क्लास लेना चाह रहे हैं, रात में होमवर्क करना चाह रहे हैं, जब सब यू नो जॉब से फारिग हो जाए उस वक्त हम से कर सकते हैं. तो ये फ्लेक्सीबिलिटी होती है ऑनलाइन स्कूल में. लेकिन माई सजेशन है अगर ऑनलाइन स्कूल में जाना है तो आप ये भी सर्च करके जाए कि कितना इसकी डिग्री कितनी कितनी कीमती है इन द वर्किंग वर्ल्ड.
अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अगर अगर आपके पास इतना सरमाया है कि आप यहाँ आकर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर आएं, लेकिन आने से पहले पूरा होमवर्क करके आएं और जिन यूनिवर्सिटियों में आपने दाखला लेना है उन पर रिसर्च करें, वहाँ स्कॉलरशिप्स के मौके को देखें और उसके मुताबिक उनको वहाँ अप्लाई करें और बहुत पहले अप्लाई करें ताकि आपका जो साल है वो ज़ाया ना हो. ये ना हो कि वो पीरियड गुजर जाए और वीज़े के मसाइल होते हैं, वो भी उनको भी तो टैकल करना होता है. तो
इन इसलिए आई थिंक 9th और 10th ग्रेड में जो भी बच्चे हैं आजकल, अगर वो अभी से डिसाइड करने कि अच्छा ठीक है मैंने रिसर्च किया है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारी जॉब्स हैं और आगे भी अच्छा लग रहा है, और फिर उसके बाद उसी फील्ड से देखें कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज क्या है जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, फिर उनसे कॉन्टैक्ट करें कि मैं 2 साल में ग्रेजुएट हूँगा, अब मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं मुझे, क्या फॉर्म फिल करनी है, वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या है, फीस कितनी है, यू नो बुक्स और डॉर्म, बहुत सारी चीज होती है अमेरिका में जो लोग नहीं काम करते, खाने पीने की, रहने की, किताबों की, तो ये सब यू नो वो आराम से आपको रिसर्च करके बता सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले.
अच्छा, बिल्कुल. तो अब ये कुछ हमारे सुनने वालों ने जब हमने आपका इंट्रोडक्शन पोस्ट किया, आपकी तस्वीरें लगाई हैं अपने फेसबुक पेजेस पर इस प्रोग्राम के, तो कुछ लोगों ने आपके बारे में सवाल लिखकर भेजे हैं, तो अगर आप कहें तो मैं जल्दी जल्दी इनके सवाल पढ़ूं और आप उनके जवाब दीजिए.
ठीक है
जी. परवेज जॉन ने लिखा कि उनका बेटा मेल नर्स और बेटी स्टाफ नर्स हैं और वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, 5 से 10 साल का तजर्बा है, वो अमरीका में कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं, और इन्होंने अपना फोन नंबर भी भेजा है.
ठीक है. अमेरिका में जॉब हासिल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इजी भी है. द फर्स्ट थिंग आई सजेस्ट कि वो लोग लिंक्डइन पे आ जाएं. लिंक्डइन में आके वो देखें कि जिस शहर में आना चाहते हैं वहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क्स हैं, लाइक पाकिस्तानी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी फिजिशियन की जो अमेरिका में यू नो थ्रू आउट अमेरिका जो सारे डॉक्टर्स हैं वो देयर पार्ट ऑफ अपना, तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे सजेशन दे सकते हैं कि यू नो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इधर आना चाहता हूँ, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. कि हर फील्ड हर इंडस्ट्री इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, लेकिन इट्स गुड कि अगर आप नेटवर्क करें लोगों के साथ जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, जो पाकिस्तान से है और जो आपके अच्छे मेंटर्स बन सकते हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट करना बहुत जरूरी है. एंड आई नो फॉर एग्जाम्पल इन मेडिकल फील्ड यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, तो दिस इज, तो एग्जाम्स देने के लिए आप आराम से इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं कि यू नो क्या क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन से एग्जाम्स रिक्वायर्ड हैं बिफोर आपको इधर आने के लिए.
इसी तरह मोहम्मद अयाज ने भी यही पूछा था, इससे मिलता जुलता, कि क्या पाकिस्तानी जो नौजवान है नर्सिंग के शोबे के तालिब इलमों के लिए अमरीका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, तो इसका जवाब तो आप तकरीबन दे चुकी हैं. और रिजवान खान ने पूछा है कि अमरीका में पाकिस्तानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप कैसे मिल सकते हैं.
इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक चीज नोट की है कि अमेरिका में जो एक जॉब है जो हर कोई स्पॉन्सर करने के लिए तैयार होता है वो है इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पे बहुत कम है, तो अगर उनके बेटे ने पढ़ चुके हैं वो, उन्होंने कुछ लिखा है इस तरह से?
नहीं, ये नहीं लिखा, बस यही पूछा है कि क्या स्कॉलरशिप मिल सकते हैं.
एब्सोल्युटली, उनको कहें कि यू नो अगर इधर आना है तो फर्स्ट यू नो रिसर्च करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, किस शहर में आना चाहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है इंडस्ट्री कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली बे एरिया में बहुत बड़ी है, टेक्सास में बहुत बड़ी है, अटलांटा जॉर्जिया में बहुत बड़ी है, इवन यहाँ पे न्यूयॉर्क डीसी एरिया में ईस्ट कोस्ट में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. तो इन शहरों में आने के लिए आप देखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इन शहरों में है और फिर इनको कॉन्टैक्ट करें कि यू नो मैं इधर आना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरा स्कोर SAT का स्कोर है, ये मेरा ACT का स्कोर है, तो मुझे किस तरह की स्कॉलरशिप मिल सकती है. तो उसके लिहाज से आप उससे फील्ड में जाए जहाँ पे आपको पता है कि ये इस फील्ड की कंपनी बहुत सारी है.
अच्छा, बैतुल्ला खान ने क्वार से पूछा था कि वो पिशावर यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के तालिब इल्म है, तो क्या उन्हें अमरीका में जियो साइंस में स्कॉलरशिप मिल सकता है MSc करने के लिए.
सेम थिंग हियर, आई थिंक डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट प्रोग्राम्स के पास इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं जिससे वो कहते हैं कि हमें कह सकते हैं कि इस साल हमें 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए लोग अलग से स्कॉलरशिप्स रखते हैं, अलग से ग्रांट्स रखते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को कॉन्टेक्ट करें, उनको बता दें दिस इज माई बैकग्राउंड, दिस इज माई स्कोर.
तो इस तरह फिर उन्हें बिल्कुल तकरीबन वही जवाब जो आप एक दफा दे चुकी, सबके लिए यही है कि जो भी यहाँ पढ़ना चाहता है वो रिसर्च करे और जो मुतालिका यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें उनके जो इंटरनेशनल जो शोबा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का उनसे रब्ता करें तो मजीद तफसीलात मिल जाएगी दाखिले के प्रोसेस के बारे में भी और उसके बारे में भी कि स्कॉलरशिप कैसे मिल सकते हैं. और इसी तरह
एक सजेशन होगी मेरी इधर के जिस जहाँ पे भी चाहे जिस यूनिवर्सिटी में भी मेक श्योर करें कि उसी सिटी में या उसके आस पास बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है जो आपको एक जॉब दे सके.
अच्छा,
ये ताकि आपको मूव ना करना पड़े, आपको यू नो कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, आराम से जॉब मिल सके.
और इसी तरह आप यही जवाब देंगी, डार मंजूर ने सवाबी से पूछा था कि उनका बेटा एमबीए है, 3 साल का मार्केटिंग का, 3 साल का एक 5-स्टार होटल में अकाउंटेंट का तजर्बा है, तो वो कैसे जॉब हासिल कर सकता है यूएसए में. तो इसका भी मुख्तसरन कहना चाहें तो जल्दी से दे दीजिए.
इसका भी तो अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, इस तरह की फील्ड जो है ना थोड़ी सी मेबी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है जॉब ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन सिटीजन जो है वो ऑलरेडी इस फील्ड में है. कंपनी सब देखती है कि यू नो अमेरिकन सिटीजन को लें जो जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं करना पड़ेगा, कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा या किसी को स्पॉन्सर.
तो डार मंजूर साहब, हाँ, तो हम इनसे कहेंगे कि यहाँ जरा मुश्किल है लेकिन जाहिर है कि हर काम नामुमकिन नहीं है, कोशिश कर देखें कि हो सकता है उन्हें मिल जाए.
कोशिश कर लें लेकिन अगर फील्ड में कुछ और ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर्स ऐड करने, यू नो कुछ इस तरह से एडिशनल काम कर सकते.
अच्छा, जहाँ जेब ने लिखा था कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पीएचडी का क्या तरीका है और उसमें कितने अखराज आ सकते हैं.
इंजीनियरिंग में पीएचडी का रियली पहले तो आप देखिए कि कितने लोग एक्चुअली इसको ढूंढ रहे हैं, कितने लोग पीएचडी ढूंढ रहे हैं, कितने लोग मास्टर्स ढूंढ रहे हैं, कितने लोग बैचलर्स ढूंढ रहे हैं. क्योंकि कभी कभी होता है कि आपकी एजुकेशन लेवल इतनी आगे चली जाती है कि लोग कहते हैं कि आप ओवर क्वालिफाइड हो गए इस जॉब के लिए, यू नो. तो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि पीएचडी आपके लिए सही होगा या इज इट वर्थ इट. अब यू हैव टू कंसीडर दैट क्योंकि जैसे प्रोफेसर होते हैं उनकी पीएचडी उसकी होती है, तो दैट्स अ गुड थिंग. लेकिन बाकी चीजों में आपको देखना चाहिए कि आप यू नो किस रेंज में रह सकते हैं आराम से.
अच्छा, और यही इसी तरह का सवाल सलाफी मुजफ्फर ने भारती कंट्रोल के कश्मीर से लिखा था कि वो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर चुके हैं तो वो जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इनको भी आप यही जवाब देंगी.
हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग जॉब जो है एक वेबसाइट है stackoverflow.com, stackoverflow.com. उसमें जो है अगर वो रजिस्टर करना चाहे तो कर सकते हैं. वो जो है एक्चुअली बताती है कि कौन कौन सी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है.
अच्छा,
तो आप आराम से उस पे जाके कह सकते हैं कि यू नो मुझे जॉब चाहिए, दिस इज माई रेज्यूमे, दिस इज माई पे, और मुझे स्पॉन्सरशिप की जरूरत है. तो फिर आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी आपको एक्सेप्ट कर.
अच्छा, बेहद शुक्रिया मरियम खान. ये फेसबुक के हमारे लिसनर्स थे जिन्होंने आपके लिए सवालात पोस्ट किए थे और हमें उम्मीद है कि आपके जो ये जवाब हैं बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब इसमें मौजूद हैं. हमारा प्रोग्राम अभी जारी है, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तो पहले एक ब्रेक और फिर बाकी गुफ्तगु. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और बिजनेस के शोबे में कामयाबी से आगे बढ़ती हुई एक पाकिस्तानी अमरीकी खातून मरियम खान, जो यहाँ वर्जीनिया में कायम साइबर सिक्योरिटी बायोमेट्रिक्स की एक कंपनी डियोन की ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर हैं। मरियम खान की कंपनी डियोन बैनुल अक्वामी सतह पर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से मालूमात तक रसाई को तेज और आसान बनाने के तरीके फराहम करती है. इसके साथ साथ हमारी मेहमान मरियम खान बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों की मदद के लिए यहाँ अमेरिका में कायम एक इदारे ओबेट हेल्पर्स की स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कमेटी की रुकन भी हैं। जबकि वो बैनुल मजाइब हम आहंगी की सरगर्मियों में भी हरदम रवा रहती हैं। ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahainzindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. اور ہماری مہمان مریم خان اس وقت موجود ہیں ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. تو گفتگو کا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں. مریم خان, بات کریں گے اوبیٹ ہیلپرز یو ایس اے کی, جو ادارہ ہے بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے لیے مدد کے لیے کچھ کر رہا ہے. تو کچھ بتائیے کہ یہ ادارہ کب قائم ہوا اور یہ اس کے جو فلاحی کام ہیں ان کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور اب تک اس کی سکسیس سٹوریز کیا ہیں؟
بیک اباؤٹ 10 سال پہلے میرے ابو کو کسی نے بتایا کہ ابھی تک جو ہے کیمپوں میں پاکستانی رہ رہے ہیں اور 30-40 سال ہو گئے. تو میرے ابو کو کنو حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سالوں بعد ابھی تک لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں ادھر وزٹ کرتا ہوں. اس کی ویکیشن آ رہی تھی تو انہوں نے کہی تھی کہ میں بنگلہ دیش آتا ہوں, کیمپ سے وزٹ کرتا ہوں. اور انہیں تھوڑا سا پیسہ کلیکٹ کیا کہ چلو وہاں پہ کسی کو اسپانسر کریں گے, کسی ایک دو فیملی کو.
نہیں تو ابو کا بنگلہ دیش سے کیا تعلق تھا؟
ایکچولی جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان انڈیا وار میں سیپریشن ہوئی تھی تو میرے ابو کی فیملی تھوڑی سی اس سائڈ سے تھی اور تھوڑی سی دوسری سائڈ سے.
اچھا اچھا.
تو ان کی کنیکشن وہاں سے بھی ہے,
تو رشتے دار وہاں تھے تو اس لیے بھی وہاں گئے. اچھا, تو پھر وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں
رشتے داروں کے نہیں ہے, اب سال سب لوگ پاکستان آ چکے ہیں. لیکن بیکاز جب وہ سب ایک تھا تو اس کو جو ہے اس سائڈ پہ وہ رہتے تھے تو
تو اب پھر اس کے بعد جب وہ وہاں گئے اور وہاں دیکھے انہوں نے حالات جو پاکستانی کیمپوں میں رہ رہے تھے, تو پھر انہوں نے یہ کیسے پھر کہانی آگے کیسے چلی؟
تو آگے ایسے چلی کہ جب وہ گئے تو ان کا مائنڈ تھا کہ ٹھیک ہے میں ادھر اسپانسر کر لوں گا ایک فیملی کو. لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 300,000 پیپل جو ہے وہ کیمپس میں رہ رہے ہیں throughout بنگلہ دیش. 300,000 پیپل کیمپس میں رہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پیسے سے دو فیملی کو کیسے اسپانسر کر سکتے ہیں. تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں کی حالت, وہاں پہ جو ان کے کیمپس تھے وہ 40 سال پہلے ایک فیملی کے لیے بنے تھے, چھوٹے چھوٹے سے کیمپس. اب جو ہے اس میں 3 جنریشن اسی چھوٹے سے کیمپ میں رہ رہی ہیں.
تو وہ کیمپ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ خیموں سے کہ ٹین سے کہ اینٹوں سے؟
اینٹوں سے تو نہیں بنے ہوئے, ڈیپینڈ کہ آپ کون سے شہر میں جائیں وہاں پہ, یا تو کپڑوں سے ہیں یا تو ٹینٹ سے ہیں. سو ڈیپینڈ کہ آپ کہاں پہ جائیں, لیکن اینٹوں سے کچھ بھی نہیں بنا ہوا.
اچھا اچھا. تو وہ اور اب پہلے وہاں جہاں ایک فیملی رہتی تھی وہاں 3 جنریشن پیدا ہو چکی ہیں, وہ وہاں پر رہ رہی ہیں.
3 جنریشن, اب 4 جنریشن بھی آ رہی ہیں وہیں پہ, اسی چھوٹے کمروں میں. ایک کمرے کا گھر جس میں آپ کھانا بھی پکا رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, آپ شام میں ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے ہیں. بہت ہی کنجسٹڈ سا ایک چھوٹا سا, ہمارا سب سے چھوٹا کمرے سے بھی چھوٹا وہ جگہ ہوگی تو ہر فیملی کے لیے. تو جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو وہاں پہ ایک بیٹی تھی اباؤٹ 60-70 years old, تو انہوں نے میرے ابو کا ہاتھ پکڑا کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی کرو, یہ ایک چیز میرے لیے کر کے جاؤ. تو انہوں نے میرے ابو کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کے گئی اس جگہ پہ جہاں دونوں سائڈ پہ نا کیمپس لگے ہوئے تھے اور بیچ میں جو روڈ تھی اس میں پانی بہ رہا تھا, سیور کا پانی. تو وہاں پہ گندا پانی بہ رہا ہے, اسی چھوٹے سے اسٹریٹ پہ بچے کھیلتے ہیں اور پانی میں گرتے ہیں اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں. ان کو کبھی کبھی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے. تو کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں اس میں گر کے وہ ہو جاتے ہیں, تو آپ اس کو کور کرا دیں. تو ایک پروجیکٹ یہ میرے ابو نے شروع کیا جیسے وہ وہاں پہنچے. اور دوسرا پروجیکٹ یہ تھا کہ وہاں پہ جو باتھ روم تھے وہ انیشلی بنے تھے ایک جنریشن کے لیے. اب اس میں جو ہے اتنی سارے لوگ اسی باتھ روم کو یوز کر رہے ہیں, بہت ساروں کے دروازے نہیں ہیں, بہت ساروں میں لائنیں لگی رہتی ہیں. تو وہاں کی جو عورتیں ہیں اگر ان کو باتھ روم جانا ہوتا ہے تو بچے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بلاک کر دیتے تھے کہ آپ آگے نہیں جائیں, وہاں پہ باتھ روم میں وہ ملے. تو دوسرا یہ کام ہوا کہ وہاں پہ دروازے لگائے باتھ روم والے. تو جب یہ حالت دیکھی میرے ابو نے جو پیسہ وہ لے کے گئے تھے اسپانسر کرنے کی ایک دو فیملیز کو, انہوں نے وہ پیسہ لگایا ان دونوں پروجیکٹس پہ. फिर वो वापस आए और उन्होंने कहा कि ओके हम लोग को इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि अभी तक ये लोग उधर रह रहे हैं. और अनफॉर्चुनेटली यू नो कोई उनकी यूएस में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी उस वक्त जो उनकी मदद कर रही है. तो वी वर द ओबेड हेल्पर्स वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने वहां पे काम शुरू किया है ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे. तो हमारे जो प्रोजेक्ट वहां पे हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन. एजुकेशन में हम लोग किंडरगार्टन फर्स्ट ग्रेड से लेके ऑल द वे अप टू कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए. और फिर ट्रेनिंग एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, इस तरह की चीजें भी इन्वॉल्व हैं. एंड द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज हेल्थ केयर. वहां पे ऑब्वियसली यू नो दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर, उनको ऑप्शन नहीं है. तो हम उन्हें क्लिनिक्स बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग आके दवाइयाँ ले सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं. और एक मोबाइल क्लिनिक भी बनाया था जो ट्रैवल करता है थ्रू आउट द कैंप, अगर किसी को कुछ जरूरत है तो उनको वो कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं. और थर्ड बिगेस्ट प्रोजेक्ट वॉज माइक्रो फाइनेंसिंग एंड सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोडक्ट. एंड इसमें जो है बहुत सारी फैमिली जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो जो अपनी फैमिलीज के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको जो है हम लोग ने एक बिजनेस और फाइनेंस क्लास के थ्रू गुजारा उन फैमिलीज को, उनकी वुमेन को इच फैमिली में. और वुमेन जो है फाइनेंस क्लास लेती है, बिजनेस क्लास लेती है, उनको टोन दिया जाता है कि अच्छा ठीक है आप ये बिजनेस शुरू करें. उनको गाइड किया जाता है थ्रू आउट द प्रोसेस कि कैसे बिजनेस शुरू करते हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, यू नो फाइनेंस रिलेटेड आइटम्स कैसे होते हैं. और फिर उसके बाद जो है जब वो सक्सेसफुल हो जाती है तो वो पैसा वापस आता है हमारे ओवर हेल्पर्स को, और फिर हम लोग एक और फैमिली को देते हैं कि ठीक है अब आप ये क्लासेस लें और उनको किसी भी बिजनेस से शुरू करा जाता है.
तो इस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपका ये जो ओबेट हेल्पर्स है इदारा जो आपके अब्बू ने बनाया और जिसकी आप स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की कमेटी की मेंबर हैं, उसमें उसने ये हेल्प करनी शुरू की हुई है. कोई 300,000 गालिबन हैं जो कितने कैंपों में बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं आ सके और बांग्लादेश में भी उन्हें वो हकूक नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे, तो वहाँ फंसे हुए हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है और आपका इदारा उनके लिए काम कर रहा है. बड़ी बात है. तो लेकिन जो आपका इदारा है उसकी फंडिंग जो है वो यहाँ पर कैसे पाकिस्तानी अमरीकी करते हैं फंड देते?
एक्चुअली हमारी सबसे नंबर वन फंडिंग इज पाकिस्तानी अमरीकियों से आती है. प्राइवेट डोनर्स हैं हमारे और हम लोगों ने शुरू ये किया हुआ है कि हम लोगों ने डिफरेंट सीरीज में चैप्टर्स ओबेड हेल्पर्स के चैप्टर्स क्रिएट किए हैं. सो वी हैव फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया में, टेक्सस में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, इंडियाना में, अब डीसी में भी हमारा प्लान है कि इसको शुरू करें अंदर. तो हर जगह सेंट लुइस मिज़ौरी में भी एक है. तो हर जगह पे हम लोगों ने चैप्टर शुरू किए हुए. तो वो कहते हैं कि एक स्कूल अडॉप्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंट लुइस मिज़ौरी ने एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ हमारा. तो हर साल वो गेट टुगेदर होता है वो ग्रुप, वो फंड रेजिंग करते हैं हमारे लिए पाकिस्तानी अमेरिकन तो सारे. और वो फिर उसको कलेक्ट करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं और स्कूल अपने भेजते हैं. और फिर हम लोग जो है ईच चैप्टर के साथ हम लोग प्रोजेक्ट के लिए उनको फीडबैक भी देते हैं. तो उनको बताते हैं कि आपके स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट सिखा रहे हैं हम लोग, आपका पैसा जो है उनको सुबह की प्रैक्टिस कराता है, उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनकी टीचर्स की यू नो पेमेंट, इस तरह की चीजें. तो हम लोग अपने स्पॉन्सर्स को भी बताते हैं कि आपका पैसा क्या करता है. तो हर चीज बहुत ट्रांसपेरेंट रखी हुई है हेल्पर्स ने.
तो इसका एक शोभा इस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ बांग्लादेश में भी मौजूद है जो आप जिसकी कोऑर्डिनेशन से ये सारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं.
हाँ जी, हम लोग का एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे हमारे एडवाइजर्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स इवन एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी बांग्लादेश में बैठे हैं जो हमें प्रोजेक्ट अपडेट दे सकते हैं. मेरे अबू अपने फुल टाइम जॉब के बाद शाम में और रात में बांग्लादेश के साथ मीटिंग्स कर रहे होते हैं कि इस वीक का स्टेटस क्या है, इस स्कूल के स्टेटस क्या है, माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं. और हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी करते रहते हैं, जैसे बाथरूम हम लोग बनवा रहे हैं नए, या जो पुराने बाथरूम थे उनपे नई दीवारें लगवा रहे हैं, दरवाजे लगवा रहे हैं, साफ पानी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. और यू नो कभी कभी जैसे सर्दियों में हम लोग ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं फैमिलीज को. और ईद में रमजान में हम लोग यू नो डिफरेंट चैरिटी प्रोग्राम्स करते हैं. वी ऑल्सो हेल्प पीपल जो जिनकी फैमिलीज में कोई काम करने वाला नहीं है उनको हम लोग फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं. जो एल्डरली है उनको भी मेक श्योर करते हैं कि उनकी भी किसी तरह से टेक केयर हो रही है ताकि उनको उनके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े. तो यू नो इस तरह की चीजें भी बहुत हम लोग करते हैं साइड में, जिसके लिए हमारे सबसे मेन डोनर्स जो है पाकिस्तानी अमेरिकन, दे हैव बीन रियली हेल्पफुल. बट एंड हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं किसी कंपनी को जो हमें जो हमारे साथ इन चीजों पर काम कर सके, यू नो लाइक माइक्रोसॉफ्ट और बिग कंपनीज लाइक दैट, जो हमारे प्रोजेक्ट को जैसे एक स्कूल अडॉप्ट करने है, हमारे कोई माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट अडॉप्ट करने है. तो वो ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू पीपल. तो अगर कोई इंटरेस्टेड है या आपको पता है कि कम्युनिटी में आप कुछ चुनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज डेफिनेटली रीच आउट टू अवर हेल्पर्स और उनको यू नो हम लोग आपके साथ काम कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं ये स्कूल्स हैं जिनमें अभी कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है.
तो इस वक्त तक ओवरऑल कितने स्कूल्स और कितने जो हेल्थ क्लिनिक्स वगैरह अब तक काम कर रहे हैं आपके इदारे के तहत?
अभी जो है हम लोग के पास, I'm sorry, I don't have the exact numbers right now, but अभी जो है हम लोग के पास क्लिनिक्स और स्कूल जो है हम लोग 7 सिटीज में लोकेटेड है. और अभी बहुत सारे सिटीज बाकी है, बहुत सारे कैंप्स बाकी है जिसमें हमें जाना है, लेकिन अभी 7 सिटीज में हम लोग काम कर रहे हैं. और इसमें स्कूल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन सब उन्होंने क्रिएट किया है. अभी रिसेंटली ऑल्सो हम लोग ने क्रिएट किया है कि वहाँ पे जो यूथ है, जो यंग यूथ वहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए उन्होंने थिंक टैंक बनाया है. तो ये थिंक टैंक का मकसद ये है कि ये जो यूथ है वो देखता है कि हमारी कम्युनिटी में अभी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. तो वो डिफरेंट प्रोजेक्ट लेते हैं एवरी मंथ, एवरी टू मंथ के लेट्स वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, यू नो दिस मंथ देखते हैं कि आपको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे यू नो ट्रैश इधर उधर फेंका रहता है तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. वहाँ के एल्डरली पीपल जो है जो काम नहीं कर सकते, जो आप खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कर सकते हैं. तो ये थिंक टैंक भी हम लोगों ने अभी नया शुरू किया है.
तो जो लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो चाहें कि आपसे राब्ता कर पाएं या कर सकें इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में या उन बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों की मदद के लिए, तो आप अपना लिंक बता दीजिए.
हाँ जी, हमारे वेबसाइट है obat.org और वहाँ पे आप जाके हमारे प्रोजेक्ट देख सकती हैं अभी क्या क्या हो रहा है हमारे कंट्री, और पिक्चर्स देख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं. और वहाँ पे ऊपर है टेक एक्शन का एक पेज है, तो उससे है हाउ टू गेट इन्वॉल्व. तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें, आप प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं, या अगर आप अभी कुछ भी कर सकते हैं हमारी मेलिंग लिस्ट भी ज्वाइन कर लें और उसमें भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे कि ओवर हाउस ने इस मंथ क्या किया है. और आप फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरे लोगों को जिनको नहीं पता इसके बारे में. कि हमारा मेन मकसद है कि ये जो अब फोर्थ जनरेशन यहाँ पे आ गई है, अब इनको जो है एम्पावर करना है और इनको कैंप से निकालना है. तो हम लोग इनको इतनी सारी कैपेबिलिटीज देनी है, इतनी सारी टूल्स एंड रिसोर्सेज देने हैं कि वो खुद ही से अपने हाथ से अपनी मर्जी से वहां से निकल सकता है.
तो ये तो हुई बात आपकी ओबेट हेल्पर्स की. और ये प्रोजेक्ट जो आपके वालिद साहब ने शुरू किया 10 साल पहले, और सिर्फ आपकी फैमिली का प्रोजेक्ट है लेकिन आपके साथ दूसरे पाकिस्तानी अमरीकी भी शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये दिन ब दिन ये प्रोजेक्ट को इजाफा हो रहा है इसके फलाही कामों में. और यकीनन आप अगर कुछ कहना चाहें पाकिस्तानी हुकूमत से, बांग्लादेश की हुकूमत से, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है कि उन पाकिस्तानियों के लिए वो क्या करें और उन्हें क्या करना चाहिए.
एब्सोल्युटली, अभी जैसे मैं अभी ओबेट हेल्पर्स की वेबसाइट पे खुद ही भी आई हूँ, तो उस पर लिखा हुआ है कि अभी जो है हम लोग ने 9,000 लोगों को यू नो इस साल क्लिनिक्स में 9,000 लोगों को देखा है अभी तक, और 1600 फैमिली जो है हम लोग के प्रोजेक्ट के थ्रू अब एम्पावर हो चुकी है. उनके घर में इनकम आ रहा है, उनके घर में पैसा आ रहा है. 4500 स्टूडेंट्स जो है हमारे एजुकेशनल प्रोजेक्ट से हेल्प मिल रही है उन लोग को. और ओवर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2,000 कैटरेक्ट सर्जरीज परफॉर्म किए हैं एल्डरली लोगों पे जिनकी आई साइट जा चुकी थी. तो अभी इतनी सारी चीजें यहाँ पे करने के लिए हम लोग अभी सिर्फ 7 सिटीज में है. तो हमारा फोकस है उन लोगों को एम्पावर करना ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे. तो अगर पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई लोग है जो मीडिया पे हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर सकें, जो हमें स्पॉन्सर कर सकें, और इवन जो हमें हमारे साथ प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर लें. वी हैव सो मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो पीपल अडॉप्ट कर सकते हैं, जिन पे कम्युनिटीज, फैमिली, जैसे आपकी एक्सटेंडेड फैमिली मिलके कोई स्कूल अडॉप्ट कर लें, कोई माइक्रो फाइनेंस का प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर लें. दैट्स समथिंग दैट वी वुड लव टू डू, वी वुड लव टू हैव.
और हम आपके आपके प्रोग्राम का, आपकी इदारे का जो लिंक है, प्रोग्राम के बाद हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं उन पर पोस्ट कर देंगे, और जो भी ताकि आपसे रابطہ करना चाहे तो उस लिंक के थ्रू आसानी से आप तक पहुंच जाए. प्रोग्राम के ख़त्म होने में अब कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया, लेकिन हम ज़रूर बात करेंगे आपके उन प्रोजेक्ट्स की जो आप इंटरफेथ हारमनी के लिए यहाँ पर कर रही हैं. कुछ उनका जिक्र हो जाए कि आप क्या करती हैं.
जब से हम लोग अमेरिका में आए थे, हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स थे, उन्होंने, मैं, मेरी बहनें और हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व रखा था हमेशा कि इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व रहो. तो मेरी डेफिनेटली सजेशन है, यहाँ पे जो यंग पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे, उनके बच्चे भी ग्रो हो रहे हैं, तो मेरी सजेशन है उनसे कि प्लीज आप ट्राई करें कि आप जितने इंटरफेथ कम्युनिटी इवेंट्स में जा सकते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व रहें. आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन अपने एरिया में. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लिव इन शिकागो, गूगल कर लें शिकागो इंटरफेथ इवेंट्स, शिकागो इंटरफेथ ग्रुप्स, इस तरह की चीजें गूगल करके आप अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें. बिकॉज अपने लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप जितना आप जानेंगे और दूसरे लोगों को, उतना ही आपकी ग्रोथ पे इजाफा होगा. एट द सेम टाइम, आजकल मुस्लिम के बारे में जो सोसाइटी में आ रहा है, इट्स गुड कि आप खुद ही से रिप्रेजेंट करें इस्लाम को, आप खुद ही से आगे जाएं, बताएं कि हम मुस्लिम क्या है, हम लोग कौन है, और हमारी अच्छी चीजें बाहर लेके आए.
अच्छा, और अब प्रोग्राम के लिए आपको एक मिनट में और दूंगी. आप हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आप इतने अरसे से अमेरिका में हैं, आपने यहाँ पढ़ा, यहाँ लिखा, यहाँ एक जॉब भी की, और अब एक कंपनी की को ओनर हैं, तो कोई जिस्ट दीजिए अपनी जिंदगी के कामयाबी का, कि आगे बढ़ने के लिए क्या उसूल आपने इख्तियार किए जो दूसरे लोगों को भी फायदा दे सकें.
मेरी सजेशन डेफिनेटली है कि आप हमेशा जो है, हमें अब्दुल अमीन ने भी सिखाया है, कभी होल्ड बैक ना करें, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड. अगर कुछ स्ट्रगल हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे, कीप ट्राइंग, क्योंकि जितना फेल होते हैं, जितना आप वो होते हैं, उतना ही आपने स्ट्रेंथ आती है आगे बढ़ने की. तो अगर कुछ मुश्किल लग रहा है और आप सोचने करने के ना करें, आंसर इज ऑलवेज करें, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो स्ट्रगल्स अभी आप करेंगे, उतना ही आपको इजियर आगे लाइफ करेगी. तो एजुकेशन वाइज भी बहुत सारे लोग मुश्किल डिग्रीज के लिए नहीं जाते हैं, बस कहते हैं मुझे इजी चीज पढ़ के कॉलेज से निकलना है. लेकिन वही, अगर आप मुश्किल चीज पढ़ के कॉलेज से निकले, आपकी उतनी अच्छी जॉब्स मिलेंगी आपको.
बेहद शुक्रिया मरियम खान. प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ. आपको खुदाफिज कहते हुए हम अपने सुनने वालों से इजाजत चाहेंगे. हमारी प्रोड्यूसर थी गुलरुख, इंजीनियर थी त्यानमन. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान थी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और बिजनेस के शोबे में कामयाबी से आगे बढ़ती हुई एक पाकिस्तानी अमरीकी खातून मरियम खान, जो यहाँ वर्जीनिया में कायम साइबर सिक्योरिटी बायोमेट्रिक्स की एक कंपनी डियोन की ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर हैं। मरियम खान की कंपनी डियोन बैनुल अक्वामी सतह पर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से मालूमात तक रसाई को तेज और आसान बनाने के तरीके फराहम करती है. इसके साथ साथ हमारी मेहमान मरियम खान बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों की मदद के लिए यहां अमेरिका में कायम एक इदारे ओबेट हेल्पर्स की स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कमेटी की रुकन भी हैं। जबकि वो बैनुल मजाइब हम आहंगी की सरगर्मियों में भी हरदम रवा रहती हैं। हमारी मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी, और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश